ஓம் சாந்தி. ஆஜ் ஹம் சப்கே பீச் மே எக் விசிஷ்ட வியக்தி விராஜமான் ஹை, ஆதரணீய உஷா தீதி ஜி. ஹம் சப் கர்த்தல் துவனி சே உன்கா அபிநந்தன் கர்த்தே ஹை. ஆதரணீய உஷா தீதி ஜி, ஜோகி பிரம்மா குமாரிஸ் கே சீனியர் ராஜயோக மெடிடேஷன் டீச்சர் ததா மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெய்னர் கேலாத்தே ஹை. விசேஷ ரூப் சே ராஜயோக மெடிடேஷன் கேம்ப் ஜித்னே பி யஹா பர் ஆயோஜித் கியே ஜாதே ஹை ததா தேஷ் விதேஷ் மே ஆப் அப்னி யே விசேஷ சேவாயே தேதே ஹை. ஔர் சாத் சாத் ஆப்கி விசேஷ ரூப் சே சேவாயே ஜோ ஹோ ரஹீ ஹை வோ ஹை மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் கே, மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் கா ஆப் விசேஷ ரூப் சே ஷுரூ சே ஆயோஜன் கர்த்தே ஹுவே அப்படி சேவாயே தே ரே ஹை. 1980 ஆப்னே பூர்ணதயா அப்படி ஜீவன் கோ ஈஸ்வரீய சேவா மே சமர்ப்பண கியா, ஔர் மானவ ஜாதி கி சேவா கே லியே ஆப்னே அப்படி பூரே ஜீவன் கோ ஈஸ்வரீய சேவா மே லகா தியா. ஆப்கே அந்தர் எக் நவீனதா கரனே கி ஜோ பி சேவாவோ கே காரியக்ரம் ஹோதே ஹை உஸ்மே சமய பிரதி சமய கோய் ந கோய் நவீனதா லானே கி விசேஷதா ரஹீ ஹை. ஔர் உசீ கே அந்தர்கத் குச் சமய சே ஆப்னே பிச்சே ராமாயண கே விஷய பர் ஆத்யாத்மிகதா கோ கோஜ் கர்கே ஆத்யாத்மிக அர்த்த கோ லேகர் கே ஆப்னே உஸ்கா கஹன் அத்யயன் கர்தே ஹுவே உன்கே ரகசியம் கோ சப்கே சன்முக தேனே கா பிரயாஸ் கியா. உஸ்கே சாத் சாத் மஹாபாரத் ஏவம் கீதா உஸ் விஷய கோ லேகர் கே பி ஆப் வர்த்தமான சமய மே பஹத் கஹன் ரீதி சே சபி கோ ஜ்ஞான் சே லாபான்வித் கர்தே ஹை கி கீதா கே ஜ்ஞான் ஹமே க்யா சார் தேதா ஹை, கிஸ் பிரகார கா ரகசிய லேதே ஹுவே ஹமாரே மானவ ஜீவன் கோ லாப் பிரதான் கர்த்தா ஹை, இஸ் விஷய கோ லேகர் கே பி ஆப் பிரவச்சன் கர்த்தே ஆயே ஹை. விசேஷ ரூப் சே ஆப் அபி அநேக பிரகார கே த்யோஹாரோ கே விஷய பர் ததா விபின் பாரத் கே த்யோஹார் ஏவம் அநேக பிரகார கே ஜோ பி விசிஷ்ட காரியக்ரம் ஹோதே ஹை உஸ்கே உப்பர் கஹன் அத்யயன் கர்கே அப்னே பிரவச்சன் பி ஆகே கே லியே தயார் கர் ரஹே ஹை. ஐசி அநேக நவீனதா ஆப் சமய பிரதி சமய கர்தே ரஹே ஹை. ஔர் ஐசி விசேஷ அனுபவி ஆத்மா ஜின்கோ ஆப் சமய பிரதி சமய அநேக டிவி சேனல்ஸ் மே பி ஆப் தேக்தே ரஹே ஹோங்கே அவஷ்ய ஹி ஆப்னே டிவி கே ஜி ஜாகரண் பர் சன்ஸ்கார் ஆஸ்தா சாதனா சேனல் ஔர் வர்த்தமான சமய பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் சேனல் ஜோ பிரம்மா குமாரிஸ் கா ஹை உஸ் பர் ஆப் சமய பிரதி சமய அப்னா காரியக்ரம் தேதே ரஹே ஹை. தோ ஐசி விசிஷ்ட வக்தா ஆஜ் ஹம் சப்கே பீச் மே உபஸ்தித் ஹை. ஹம் சுனேங்கே ஆதரணீய தீதி சே ஆஜ் கா விஷய. மே தோ சப்த கஹனா சாஹுங்கி. ஃபூலோ கி சுகந்த் தோ வாயு கி திஷா மே ஃபைல்தி ஹை. ஃபூலோ கி சுகந்த் தோ வாயு கி திஷா மே ஃபைல்தி ஹை பரந்து வியக்தி கி சுகந்த் சபி திஷாவோ மே ஃபைல்தி ஹை. வியக்தி கி சுகந்த் தோ சபி திஷாவோ மே ஃபைல்தி ஹை. தோ ஐசே ஆப் விசிஷ்ட வியக்தி ஹமாரே சன்முக ஹை. எக் பாத் மே அனுரோத் கர்னா சாஹுங்கி ஷுரூ கர்னே சே பஹலே பீச்சே பேட்டே பாய் பஹனே தோடா ஆகே ஸ்தான் லே லேங்கே தோ அச்சா லகேகா. ஆப் சப் பீச்சே சே தோடா ஆகே ஆ ஜாயேங்கே. तो अभी हम सुनते हैं आदरणीय उषा दीदी को.
ओम शांति. परम पिता परमात्मा के दिव्य परिचय. आज हम सभी के सन्मुख ऐसा समय आ गया है कि परमात्मा के साथ रूबरू होने का. दुनिया में अनेक आत्माओं का परिचय हमें होता है, परंतु ये एक आश्चर्य की बात है कि हमें न खुद की पहचान न खुदा की पहचान है। और इसलिए शायद आज संसार में अनेक मतभेद हो गए हैं। बहुत सुंदर अभी हमने ये गीत की लाइन सुनी कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है और तू गुमनाम क्यों है। अनेक सवाल भगवान को किए जा रहे हैं और शायद आज हर मनुष्य के मन में ये सारे प्रश्न है ईश्वर के प्रति, क्योंकि सत्य का परिचय नहीं है। इसीलिए हर मनुष्य के मन के अंदर ये एक शिकायत जरूर रहती है कि जब भी हम भगवान को याद करने बैठते हैं उसी समय हमारा मन भटक जाता है, मन लगता नहीं है, क्योंकि शायद कहां लगाए यही पता नहीं है। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है तो प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है, आपका विवेक क्या कहता है, क्योंकि ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आप नेचर को परमात्मा कहे या मनुष्य को कहे, ब्रह्म को कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे, तो आखिर भी सत्य क्या है, और भी कई मतें हो सकती है। और इसीलिए आज संसार में हर व्यक्ति ईश्वर के विषय को लेकर इतना कंफ्यूज्ड है। और ये कंफ्यूजन भी हमारे सामने क्यों आई, तो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सुरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है, थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब करने लगे। एक ने कहा पैर पकड़ते हुए कि हाथी खंभे जैसा है, पीठ पकड़ी तो कहा दीवार जैसा है, पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी जैसा है, सुंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और कान पकड़े तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है, क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, सत्य क्या है, हाँ? सत्य कुछ और है। यहां तक की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये पांचों सुरदासों को कहा जाए कि छठा सुरदास दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। ये पांचों वन बाय वन जाते हैं और हाथी को डिस्क्राइब करते हैं। पहला जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा कहता हाथी एक ऐसा प्राणी है जो पतला पतला रस्सी जैसा है। चौथा कहता हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा पंखे जैसा है। अब ये छठा सुरदास जिसने महसूस भी नहीं किया वो क्या समझेगा कि हाथी कैसा प्राणी है? सोचेगा ऐसा कैसा प्राणी है, हर कोई आता है अपनी बात बताता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि ये पांच ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही में होगा ऐसा कोई प्राणी होगा, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सुरदास को कहा जाए कि एक सातवा सुरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है हाथी कैसा है। तो छठा सुरदास जाता है सातवें सुरदास के पास और कहता है देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया कि हाथी कैसा प्राणी है, लेकिन पांच ने जो महसूस किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो पतला पतला रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो सांप जैसा हो जाता है और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। अब ये सातवां सुरदास सुनने के बाद क्या कहेगा, क्या कहेगा? हाँ, पांचों को मिला देने से हाथी बन जाएगा? नहीं, सातवां सुरदास जो भी नेत्रहीन है, ये सभी नेत्रहीन है, उसको जाकर के जब छठे सुरदास ने बताया तो वो क्या कल्पना करेगा कि हाथी कैसा प्राणी है, क्या कहेगा? कंफ्यूज्ड। और क्या कहेगा? बकवास, ऐसा कोई प्राणी होता है? अरे कोई रंग बदल सकता है, पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है? एंड हाउ कैन यू बिलीव दिस, कैन यू प्रूव इट, कैसे विश्वास कर लिया? तो छठा सुरदास कहता है देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया लेकिन पांच ने तो किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो, कहेगा कि नहीं? शायद यही हालत हमारी भी हो गई, क्योंकि नेत्रहीन सभी है, ज्ञान के चक्षु किसी के पास नहीं है। और इसीलिए हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने साधना की शक्ति के द्वारा ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया अपनी तपस्या के बल पर, उन्होंने मनुष्य को सुनाया अलग अलग बातें। किसी ने कहा नेचर इज गॉड, किसी ने कहा हम ब्रह्मास्मि, हम ही परमात्मा है, किसी ने कहा ब्रह्म ईश्वर है, किसी ने कहा कण कण में व्यापक है, किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा साकार है, किसी ने कहा है ही नहीं। अब मनुष्य ने फिर भी विश्वास कर लिया कि भाई ऋषि मुनि झूठ थोड़ी बोलते हैं, उन्होंने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, होगा, ये सभी परमात्मा का दिव्य स्वरूप हो सकता है, वो घड़ी घड़ी बदलता होगा रूप अपना। भगवान भी बहुरूपिया है, कह दिया उसको भी बहुरूपिया। लेकिन वो मनुष्य ने जब आज की जेनरेशन के बच्चे को कहना चाहा कि ये सारे भगवान हैं, तो आज की जेनरेशन का बच्चा क्या कहता है, क्या कहता है? बकवास, ये सारे भगवान थोड़ी हो सकते। एक बात कहो ना, व्हाट इज ट्रूथ? इतनी बातें कह करके आप कैसे कहते हैं कि ये सब हम मान लेवे? तो मनुष्य क्या कहता है? देखो भाई, ऋषि मुनि झूठ थोड़ी बोलते थे। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। शास्त्रों में जो लिखा है बस हम तो वही सुना रहे हैं। और इसलिए आज सत्य किसी को पता नहीं है, और इतने कंफ्यूज स्टेज में आ गए मनुष्य कि भगवान को जब पूजा करते हैं ना शाम को अपने घर में या मंदिर में, तो मंदिर में भी सारे देवी देवताओं के फोटो रख दिए, जो भी सही हो। हमें तो पता ही नहीं है सत्य क्या है। इसीलिए ये प्रार्थना जो कर रहे हैं, भाई आप में से जो सही हो स्वीकार कर लेना। ये हाल हो गया है आज हमारा। अब अगर हम अपने पिता को ही न जाने तो क्या कहेंगे? अनाथ ही कहेंगे, अनाथ हो गए। इसलिए भटकने वाली स्थिति हो गई है कि मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। आए दिन दुनिया में एक नया मंदिर खड़ा हो जाता है, कोई नया देवी देवता का नाम लेकर के जो कभी सुना ही नहीं है। ऐसे देवी देवताओं के नाम से मंदिर बनने लगे हैं, और इसीलिए आज मनुष्य इतना कंफ्यूज स्टेज में है कि सत्य क्या है वो जानता ही नहीं है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब भगवान बचाए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। कृष्ण भक्त था, दिन रात से कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी उसने। हे कृष्ण, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। दो दिन हो गए, उतने में एक पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे तू कब से श्री कृष्ण को याद कर रहा है, लेकिन ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। का फिर कहा, ऐसे समय पर माँ का हृदय करुणा वाला होता है, तो माँ को याद कर, अंबे माँ की पूजा कर, देख तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, ऐसे समय में तो माँ को ही पुकारना चाहिए। उसने माँ की प्रार्थना आरंभ कर दी, हे माँ करके पुकारने लगा। दो दिन हो गया, उतने में एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा कि अरे ऐसे समय में माँ को थोड़ी पुकारना होता है। का फिर कहा, रे विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तो गणेश जी को याद कर, देख ये विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। दो दिन हो गए, उतने में एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे गायत्री मंत्र का चमत्कार होगा, देख तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसने गायत्री मंत्र शुरू कर दिया। उतने में एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान चालीसा कर, देख ये संकट टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, संकट मोचन तो हनुमान जी है। हनुमान चालीसा करने लगा, उतने में एक और मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे फलाने गांव में एक बाबा जी आए हैं, वो ऐसी भभूति देते हैं कैसे भी असाध्य रोग ठीक हो जाता है, चलो बच्चे को लेकर के वहां चलते हैं, बेटा ठीक हो जाएगा। लेके गए, भभूति खिलाई, आए, दो दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? इतने सबको याद किया, क्यों नहीं बचा बच्चा? विश्वास ही नहीं था। क्या इसको विश्वास कहेंगे? क्या यही हमारा भगवान में विश्वास है? और इसीलिए जहां ऐसा विश्वास अगर हो तो कभी भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। तो सत्य क्या है? कम से कम सत्य को समझने का प्रयत्न तो करें, नहीं तो कल को आपका बच्चा आपका पोता आकर के पूछेगा कि आखिर भी ये सब में से सत्य क्या है बताइए। और अगर आपने कह दिया कि ये सभी सत्य है, सभी की पूजा करो, अब ये तो विश्वास नहीं है ना, वो बच्चा विश्वास नहीं करेगा। और इसीलिए आज के जेनरेशन के लिए भी हमें जानने की आवश्यकता है कि सत्य किसको कहा जाए। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने एक और बात बता दी कि हमें उस पर विश्वास करना है, नहीं हम और मत नहीं बताएंगे। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और ये कसौटी है पांच बातें कि सत्य किसको कहा जाए। पहली बात, सत्य उसको कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड, उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे सत्य। उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा सभी चक्र से ऊपर है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ हो, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान है, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो। ये पांच बातें हैं कसौटी, इस पर कसकर देखते हैं सत्य किसको कहा जाए। पहली बात, जब हम कहते हैं कि प्रकृति परमेश्वर है, क्या सचमुच प्रकृति परमेश्वर है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या प्रकृति को परमेश्वर के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? नहीं। उसको सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? नहीं। किसी कवि ने बहुत सुंदर ये लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आप सभी उस बात से सहमत है? ये ब्रह्मा कुमारियां नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। दूसरा, जब हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है, हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? संतान है कहना सही है, तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, सही बात है। कई लोग सोचते हम परमात्मा बन जाएंगे जीवन में अगर पुरुषार्थ करेंगे तो। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है या पोस्ट पोजीशन नहीं है जो हम अपने पुरुषार्थ से मेहनत से प्राप्त कर लेंगे। इस संसार में मनुष्य कोई भी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकता है अपनी मेहनत से, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है नहीं, पिता जैसा बन सकता है। इसी तरह मनुष्य ने भी जैसे कर्म किए वैसा टाइटल जरूर मिलेगा। पुण्य कर्म किए तो पुण्यात्मा कहा, महान कर्म किया तो महात्मा कहा, धर्म का काम किया तो धर्मात्मा कहा, दिव्य कर्म किया तो देवात्मा कहा। तो देवात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा, परमात्माएं ग्रामर में ये शब्द नहीं आता है। और ये सब भी आत्माएं हैं। परमात्मा ने पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने दिखाते हैं? 33 करोड़ देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा नहीं है। कई लोग सोचते हैं जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, एक बड़ा परमात्मा है, उसके अंश होकर के हम नीचे आए टुकड़े टुकड़े होकर के, और फिर जाकर के उसी में लीन हो जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि ये मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है। बच्चा बाप का अंश होता है, लेकिन ये शरीर, शरीर अंश है जो मैटर का बना हुआ है। आत्मा के लिए तो यही कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता है, जो शाश्वत है, शक्ति है। अगर शक्ति है तो शक्ति और मैटर की कंपैरिजन कभी नहीं हो सकती है। कंपैरिजन करो तो बराबरी की करो ना। मैटर के साथ कंपैरिजन करके हम क्या समझना चाहते हैं? इसीलिए शक्ति के लिए तो यही कहा जाता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना, उसका अस्तित्व है शाश्वत रूप में। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? संतान है कहना सत्य है। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश टुकड़ा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश कहना सत्य है? वंश है, हम अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते हैं। ब्रह्म क्या चीज है? तो 5 तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है जिसको कहते ब्रह्म महतत्व, जिसको अनेक धर्मों में अनेक नामों से जाना गया। किसी ने उसको परम धाम कहा, शांति धाम कहा, मोक्ष धाम कहा, निर्वाण कहा, सचखंड कहा, रूहानी दुनिया कहा, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा। हर धर्म में अलग अलग नाम दिए गए जहां आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं अपने शाश्वत स्वरूप में। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं, लेकिन जो कई लोग प्रार्थनाओं में गाते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर, पार 5 तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म में निवास करने वाले ईश्वर, तो सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। क्लियर? आगे बढ़े। क्लियर? चौथा, जब हम कहते कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है? क्या सचमुच भगवान सब में है? कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान हो सकता है? क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है? तब मनुष्य क्या कहते हैं, नहीं सभी प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अगर हर प्राणी के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करे तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को बुरा कर्म करने से रोक सके? आज देखो, घर में अगर बच्चे होते, माँ बाप सामने बैठे होते हैं और बच्चे अगर किसी विषय को लेकर के या किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे तो माता पिता देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे, क्या करेंगे? एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है तो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, वो सब में बैठा है और मनुष्य इतना उसके नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो भी वो कुछ कहे नहीं, रोके नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब? आज कोई हमें बात पूछता है या बताता है, हमें मालूम नहीं होता है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते कि नहीं? कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने? फिर ये ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? फिर या तो ऊपर वाला परमात्मा है या नीचे वाला परमात्मा है। गीता के अंदर भगवान ने चौथे अध्याय में जब वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। अगर वो यही है तो कौन आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते अधर्म कैसे? कई सवाल मन के अंदर आ जाते हैं। आज देखो, प्रकृति के पास भी ये विशेषता है कि एक लोहे के सरिये को अगर हम आग में रखते हैं तो संग का रंग लग जाता है कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। संग का रंग अपने गुणों को ट्रांसफर कर देता है प्रकृति भी। परमात्मा जो गुणों में अनंत हो और वो हम सबके अंदर विराजमान हो और मनुष्य के अंदर कोई गुण दिखाई न देवे, ऐसा हो सकता है? उसके कोई गुणों का संग का रंग में न लगे, ऐसा हो सकता है? लेकिन तब फिर बात यह आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में आई ना, हमने थोड़ी कही है। क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही नहीं, ये तो हो सकता है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। किस बेसिस पर लिखे? अनुभव के बेसिस पर लिखे, या अपनी साधना की शक्ति से जो उन्होंने महसूस किया उसके बेसिस पर शास्त्र लिखे गए। और कहा जाता कि उस समय के ऋषि मुनि सिद्ध थे, they were able to travel through time, समय के अंतराल से गुजर सकते थे। और जब वो कलयुग को देखते थे कि कितना घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और वो पाप कर्म कम करे। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, घुटना करना जब सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है। बाहर एक कुत्ता या कोई जानवर दिखाकर कहेगी देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि माँ के लिए बच्चे की सुरक्षा प्रथम है। और इसीलिए उसने ये कहा, बच्चा घुटना करते हुए जाता है दरवाजे तक और जैसे कुत्ते को देखेगा क्या करेगा, अंदर आ जाएगा, खुश होता है, आई एम सेफ। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती, लेकिन उसी बात को उसने विश्वास कर लिया था और सुरक्षित रहा था, लेकिन समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब कली काल आरंभ होता है, आज से कुछ सालों पहले तक की बात है, 200-300 साल पहले तक की बात है, कि अगर मनुष्य को कोई प्रेरित भी करता था गलत कर्म करने के लिए, तो मनुष्य क्या कहता था, माफ करना, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मुझे मना कर देता था। लेकिन आज के युग में अगर कोई इसको याद भी दिलाता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही बात कहता है, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। यानी जिस बात का उसको डर था और सुरक्षित था, पाप कर्म नहीं करता था। आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो उस बात को स्वीकार नहीं करता है और पाप करता ही चला जा रहा है। कई बार कई लोग हमसे बहस करते, आप क्या कहना चाहते, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, हम उनको एक ही बात पूछते, आप मानते हैं, कहते हाँ हम मानते, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है। तब हम उनको कहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जिसको ये डर हो भगवान कण कण में है मुझे देख रहा है, उससे कभी कोई गलत काम होगा, हो ही नहीं सकता है। जब ये बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है, आपको उस बात को मानना नहीं है, पाप कर्म करते जाना है, और वाई एडवोकेट देन, क्यों उस बात की पब्लिसिटी करते हैं, या तो मानो फिर कहो, मानना है नहीं और कहो भगवान कण कण में है, ये कहां की बात है। इसीलिए कहा सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। इस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा, कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा, लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि माइक में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा है। हमें अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देना है, उस भावना को लेकर चलना है, उस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। क्या अगर हम बाहर जा रहे हैं, कोई हमें कहता है बहन जी आप अकेले हैं, तो हम कहेंगे नहीं भगवान मेरे साथ है। इस भावना को लेकर चलो, बड़ी ऊंची बात है, कभी कोई गलत काम नहीं होगा जीवन के अंदर, सुरक्षित रहेंगे, उसकी छत्र छाया में रहेंगे, लेकिन हर चीज को परमात्मा मान करके उसकी पूजा करने लगना, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़े। पांचवा जब कहते हैं निराकार है, ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज नहीं है। हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो वो भी दिखा देता है, चित्र देखकर कहेंगे चक्रवात है, और शांत प्रकृति दिखानी है तो वो भी दिखा सकता है कि जैसे हवा चली नहीं रही है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा दिया, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर आकार दे देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो क्या स्वयं ईश्वर नाम रूप आकार बिना होगा, नहीं, उसको भी अपना नाम रूप आकार है। तो निराकार का भाव है जिसकी आकृति मनुष्य जैसी नहीं है, उस भाव से कहा निराकार, तो फिर उसकी आकृति कैसी है। तो जिस तरह एक पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ज्योति पुंज, अगर आत्मा का स्वरूप ज्योति पुंज है, इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत जलाई। आत्मा अगर ज्योति स्वरूप हो तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज है। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगती है। तो हिंदू धर्म में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति की आकृति है, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए एक आकृति दे दी हिंदू धर्म में जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित करें, और नाम दिया सदा शिव, यानी सदा कल्याण करने वाले सदा शिव। शिव माना शांति, शिव माना परम पवित्र, शिव माना कल्याण। तो जो कल्याणकारी है, परम पवित्र है, शांति के सागर है, और इसलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा मिलती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। इसलिए उसके हर मंदिर के नाम के पीछे या नाथ या ईश्वर जुड़ता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर, जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा मिलेगी, गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय मुरुगन की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, और इसीलिए उसको महादेव कहा। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों का भी देव महादेव। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से प्राप्त की थी। इसीलिए तो भोलानाथ का रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी दे दी, कितना भोला है। श्री कृष्ण ने वृंदावन में बचपन से गोपों के साथ मिलकर जिसकी पूजा की, इसलिए उसको कहा गोपेश्वर, गोपों का भी जो ईश्वर है। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्हें पूजा करने की क्या जरूरत थी? जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो कहा असुर संहारनी शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। असुर संहारनी, जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी ही अलग है, स्वरूप ही अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य ही अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ कल्याणकारी, शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई मंत्र देता है ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते हैं? भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि तो कोई नहीं कहता है। अगर एक है तो कहना चाहिए। शंकर को ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने ध्यान किया। किसका किया? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, और वहां बैठकर शंकर ने भी ध्यान किया। किस लिए? क्योंकि उनको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, आंख खुलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके, इसीलिए उनको ध्यान मुद्रा में अधिक दिखाते हैं कि कितने सालों तक का ध्यान किया। तो दोनों एक नहीं अलग है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई भारत की बात, हिंदू धर्म में। लेकिन भारत से बाहर जाते हैं, इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु मक्का जब हज यात्रा पर जाते हैं लोग, तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है। और ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे जिनको वो अल्लाह मानते थे। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए, तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ। मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का से मदीना भेज दिया गया, लेकिन फिर भी ये विचारधारा चलती रही, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग हो गए, पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा खून खराबा हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से एक पत्थर गिरा, जिसको कहते हैं काबा का पवित्र पत्थर। और आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, ये पवित्र पत्थर की स्थापना की गई। और तभी ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकते, नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाते हैं क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और किसी मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब प्रकाश, तेज, ज्योति। और ज्योति का मतलब प्रकाश, तेज। बात एक ही है या अलग है? हिंदू धर्म में जिसको ज्योति कहा, ज्योतिर्लिंगम कहा, लिंग मना आकृति, जो ज्योति की आकृति है, और उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही है ना। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म, यहूदियों में कहा जाता है कि जब मोसेस माउंटेन पर गए, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन निराकार ज्योति स्वरूप प्रकाश का सिंबल ही मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, गॉड इज लाइट। मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में उनकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं कहा। एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, कितना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान करते हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? आज भी दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाया जाता है, उस समय जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, वो गति हमें भी प्राप्त हो। ये शिव धाम कौन सा है? शिव कौन है? जिसको उन्होंने कहा सिद्ध शिलापति, यानी जो सर्वश्रेष्ठ। और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते, ज्ञान, दर्शन, चरित्र। चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान के दिव्य चक्षु होने चाहिए, तब उसका दर्शन संभव है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन उसको भी ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं। किसका ध्यान करते हैं? आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर, 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते हैं चिंकुन सिखी, यानी जो शांति का दाता है। और इसीलिए उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते, अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं कि उससे हमें मन की शांति प्राप्त होती है, माइंड रिलैक्स होता है। वैसे भी आज का साइंस ये ओवल शेप शिवलिंग के ऊपर काफी रिसर्च कर रहा है, और उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म के शास्त्र में जो साइंस है, ऐसा साइंस दुनिया में कहीं नहीं है। कि ये जो स्वरूप हिंदू धर्म में दिया, क्योंकि ये स्वरूप में सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इसीलिए उसके ऊपर वो पानी की बूंद बूंद जो टपकती रहती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है उसमें से कि उसको शीतल रखना आवश्यक है, इसीलिए बूंद बूंद टपकता रहता है। और भारत के अंदर पुरुष प्रधान समाज के अंदर यही मान्यता रही कि पुरुष ही जाकर के उस ऊर्जा को प्राप्त करे, और इसीलिए बहनों को अलाउड नहीं किया, क्योंकि अगर बहनें ऊर्जा ले लेंगी तो क्या होगा उनका। इसीलिए उन्होंने गलत मतलब निकाल करके मना कर दिया कि बहने न करें। लेकिन परमात्मा शिव जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो बहनों को ही आगे करके वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए आज विश्व के अंदर लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तभी कहा कि विज्ञान इसी पर रिसर्च कर रहा है। और आपने ये भी अगर ध्यान दिया हो तो जो न्यूक्लियर सेंटर्स होते हैं, न्यूक्लियर सेंटर्स की आकृति शिवलिंग के रूप में की जाती है, बनाई जाती है। कहने का भावार्थ यही कि इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा, और इसीलिए हिंदू धर्म में इसी शेप में उसको दिया गया और कहा निराकार स्वरूप। पारसी धर्म में जाए तो कहा जाता पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, अखंड ज्योति स्वरूप कि जो नित्य जलती रहती है। उसके टेम्पल को भी कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत जलती रहती है। तो पहली कसौटी सर्व धर्म मान्य कौन है? जो देवों का भी देव, सभी देवी देवताओं ने भी जिसको याद किया, जिसकी पूजा किया, भले नाम अलग अलग दिया हो, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साई बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साई बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक कहा। नाम अलग अलग हो
लेकिन स्वरूप तो एक ही दिखाया हर धर्म में। जैसे आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन आपका स्वरूप वही रहेगा या हर बार बदली हो जाएगा? क्या होगा? वही रहेगा ना। तो ईश्वर को भी कोई गॉड कहे, प्रभु कहे, मालिक कहे, अल्लाह कहे, हाँ, स्वरूप तो एक ही होना चाहिए और एक ही दर्शाया हुआ है। वही परमात्मा को दूसरी कसौटी सर्वोच्च शक्ति के रूप में हर एक अपनी अंगुली का इशारा करते हैं ऊपर की ओर। और इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, वो सर्व का माता पिता, गुरु, बंधु, शिक्षक, रक्षक, इसीलिए शिव शंभू कहा। और जो सभी चक्रों से पर है, गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, मैं अजन्मा हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं कालों का काल हूं, मैं अकर्ता भोक्ता हूं, अव्यक्त पुरुष हूं, मुझे कोई व्यक्त देह नहीं है। तो जो सभी चक्र से परे है, ऊपर है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, लेकिन पर होते हुए भी जो सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों का ज्ञान है और सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी जो ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, जीओडी गॉड फादर, द फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन यहां भारतवासी को एक प्रश्न जरूर मन के अंदर आएगा कि यहां जो ब्रह्मा का चित्र दिखाया और भक्ति में हमने जो ब्रह्मा का चित्र देखा वो तो अलग है, इसको ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? वैसे आप इस सेशन के बाद ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी संपूर्ण रूप में सुनेंगे कि कैसे परमात्मा ने उनको माध्यम बनाया और किस अनुभूति के माध्यम से वो ब्रह्मा बने। लेकिन मैं एक शास्त्र के पक्ष से सुना देती हूं कि ब्रह्मा एक ही देवता है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है, बाकी देवी देवताओं को दाढ़ी मुछ वृद्ध अवस्था नहीं होती है, असुरों को बड़ी बड़ी मुछे होती है, मनुष्य को दाढ़ी मुछ वृद्ध अवस्था होती है, देवों को नहीं होती है। यानी ये किसी बात का प्रतीक है। कमल आसन धारी दिखाया, कमल के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता है, लेकिन जब कमल आसन धारी दिखाया तो ये भी किसी बात का प्रतीक है, सूचक है। आज की दुनिया में कोई बच्चा दो मुंह वाला पैदा होता है तो क्या कहते हैं? एबनॉर्मल चाइल्ड। ब्रह्मा को चार मुख धारी दिखा दिया फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा, ये भी किसी बात का प्रतीक है। हाथ में सारे शास्त्र दिखाए, ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? ये भी किसी बात का प्रतीक है। तो क्या प्रतीक है? तो कहा जाता कि परमात्मा को जब नई सृष्टि रचने का संकल्प आया, अधर्म का नाश सद धर्म की स्थापना का संकल्प आया, उस समय इस पृथ्वी के ऊपर कौन सा समय चल रहा था? देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि नहीं थी, मनुष्य की सृष्टि थी। और इसीलिए मनुष्य सृष्टि का प्रतीक दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था। अधर्म जब अपनी चरम सीमा पर था उस समय मनुष्य सृष्टि थी, और परमात्मा ने जब उसमें अवतरित होकर के अपना दिव्य कार्य करने के लिए उसको निमित्त बनाया तो सबसे पहले क्या किया, उसके जीवन का शुद्धिकरण। कि उस समय कीचड़ जैसी दुनिया थी और उस कीचड़ जैसी दुनिया में एक कमल को खिलाया, शुद्धिकरण किया, और शुद्धिकरण करने के बाद क्या किया, ज्ञान सुनाया। कौन सा ज्ञान? सभी शास्त्रों का निचोड़, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। इसलिए सारे वेद पुराण उपनिषद सब शास्त्र दिखा दिए। और किसको सुनाया? खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार की आत्माओं को। तो सारा संसार कैसे दिखाए? तो चार दिशा में चार मुख के वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ संसार के चारों दिशा में फैला। और फैला कैसे? सहस्त्र भुजाओं द्वारा। आज कोई हमारा मददगार होता है तो क्या कहते हैं? ये मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, यही कहते हैं। तो भुजा मददगार की निशानी है। तो परमात्मा के इस दिव्य कार्य में हजारों आत्माओं ने अपना सहयोग दिया, अपना मददगार बन गए, और तब ये संसार परिवर्तन यानी अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसीलिए जो कार्य परमात्मा इस समय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे इसके बाद के सत्र में। और वही सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। विज्ञान के अंदर अणु को सबसे सूक्ष्म माना जाता है, और गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है? बिंदु की डेफिनेशन है इन्फिनिट। डायमेंशन लेस, मेजरमेंट लेस, इन्फिनिट। बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं होती, बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं लिख सकते, पहले बिंदु। तो परमात्मा को भी अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो यही कहेंगे वो बिंदु में सिंधु है, गुणों में अनंत है, लेकिन रूप में बिंदु है। तो बिंदु में सिंधु है, तो पांचों कसौटी एक के साथ ही लगती है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज परमात्मा के परिचय में भी हमने पांचों बातों को देखा। जिस चैतन्य शक्ति का नाम है सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, सिद्ध शिलापति, चिंकुन सेकी, अखंड ज्योति, उसका स्वरूप हर धर्म में निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, नूर, प्रकाश, लाइट, अखंड ज्योति, जो भी कहो। उसके क्वालिफिकेशन पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, परम धाम का निवासी है, मोक्ष धाम, सचखंड, रूहानी दुनिया, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड, सातवां आसमान, जो भी कहो। और उसका कर्तव्य यदा यदा ही धर्मस्य, ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है, लेकिन खुद अकर्ता है। इसलिए शंकर द्वारा इस पुरानी सृष्टि का महाविनाश, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की सर्जना कराने वाला कौन? परमात्मा। इसीलिए परमात्मा को कहा जाता करण करावनहार, खुद करता नहीं है, ये तीन मूर्तियों के माध्यम से अपना दिव्य कर्तव्य कराने वाला वो परमेश्वर है। ठीक है, तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। मैं समझती हूँ मत क्लियर हो गई होंगी अब अगर आपका बच्चा या पोता आपसे पूछे तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है, क्लियर हो गई। और अब ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि हमारा मन ईश्वर में नहीं लगता है, योग नहीं लगता है। अब तक योग इसलिए नहीं लगता था क्योंकि परिचय ही नहीं था, अब क्लियर हो गया तो अब तो लगेगा, ध्यान लगेगा, है ना। लेकिन उससे मांगना नहीं, जैसे बाहर खड़े हो जाओ सूर्य के सामने तो सूर्य से मांगते नहीं है कि हे ईश्वर तेरी गरमाइश मुझे दे, मांगते नहीं, खड़े रहो रोम रोम में गरमाइश भर जाएगी, पूरा ऊर्जा समा जाएगी। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है कि हे समुद्र मुझे तेरी शीतल हवा दे, खड़े रहो शीतल ऊर्जा भर जाएगी। इसी तरह परमात्मा से भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने ध्यान को एकाग्र करो उस दिव्य स्वरूप में और परमात्मा शक्ति ऊर्जा को आने दो। आत्मा के अंदर जैसे ही वो ऊर्जा भरने लगेंगे हम आत्माएं सशक्त हो जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे, सर्वशक्तिमान की संतान हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा 2 मिनट हम सभी ध्यान में बैठेंगे।